பெரிய மகத்தின் பையோ பகினோ சமஸ்த சங்க சதஸ்யா ஆளுநருக்கோ 11 அத்தியாய ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா கா 11 அத்தியாய கா 11வா ஸ்லோக் படிக்க சுனாத்தி ஹூ करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है ऐसे अभिव्यक्ति पुरुष यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। इस श्लोक में मुख्य बात ये आई है कि परमात्म तत्व का अनुभव बोल कर सकते हैं जिनका अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध हो गया है, लेकिन जो अभिव्यक्ति है वो इस तत्व का अनुभव नहीं कर सकते। व्याख्या है, सदा न भोग साफ रहता है न संग्रह साफ रहता है, ये विवेक मनुष्य में स्वतः है, परंतु जो मनुष्य शास्त्र पढ़ते हुए सत्संग करते हुए साधन करते हुए भी अपने विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते, भोग और संग्रह से अलगाव का अनुभव नहीं करते, ये मनुष्य अकृत आत्मा है। ऐसे मनुष्यों को 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने अकृत बुद्धि और दुर्मति कहा है। यद्य परमात्मी कक्ष नहीं है तथापि भीतर में राग और शक्ति सुख बुद्धि पड़ी जाने से वे साधन करते हुए परमात्मा को नहीं जानते, कारण की भोग तथा संग्रह में रुचि रखने वाले मनुष्य का विवेक स्थिर नहीं रहता। क्या बताया कि चाहे शास्त्र पढ़ते हैं चाहे सत्संग करते हैं, लेकिन फिर विवेक में ध्यान नहीं देते और भोगों में लगे रहते हैं। तो भगवान ने उनको क्या बोला, अकृत बुद्धि दुर्मति और इस श्लोक में अकृत आत्मा बोला, अकृत आत्मा मानो परमात्मा को नहीं जानते, कारण की भोग तथा संग्रह में रुचि रखने वाले मनुष्य का विवेक स्थिर नहीं रहता, कभी तो सोचते है भगवान और कभी भूल जाते। गूढ़ा कहा गया उनको, यहाँ अचेतसा कहा गया है, गूढ़ा अचेतसा सब एक ही है, गुणों में मोहित होने के कारण वे ना तो विषय के विभाव को जानते हैं या स्वयं के विभाव को ही जानते हैं, अर्थात भोगों का संयोग योग अलग है स्वयं अलग है, ये नहीं है। मतलब वो ये नहीं जानते कि भोग तो आये शरीर से संबंधित है, इनका मिलना जुलना कभी मिल जाते हैं कभी नहीं मिलते हैं, और आत्मा जो है स्वयं मतलब आत्मा अलग है। 7वें से 11वें श्लोक तक इस प्रकरण में भगवान ये बताना चाहते हैं, मेरा अंश जीव आत्मा सर्वथा अलग है, और जिस सामग्री शरीर आदि पदार्थ और क्रिया को मैं भूल से अपनी मानता है वह सर्वथा अलग है, सोय की व्याप्ति की तरह दोनों का विभाग ही अलग अलग है। जैसे अमावस्या की व्याप्ति को सोय वो अलग है अलग है, ऐसे भोग अलग है आत्मा अलग है, ये उपयुक्त जड़ और चेतन दोनों के विभाग को स्वतः अलग अलग देता है, वही ज्ञानी और योगी है, परंतु जो दोनों को मिला हुआ देखता है यह ज्ञानी और भोगी है। श्लोक 12 यदा आदित्य गतम तेजो जगद भाष्य ते अखिलम यचंद्रमसी अग्नो तत्तेज विद्धि मामकम, सूर्य को प्राप्त हुआ जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है उस तेज को मेरा ही जान, कि सूर्य में चंद्रमा में अग्नि मेरा तेज है, भगवान कहते हैं। यक्ष है तो भाव और महत्व की तरफ आकर्षित होना जीव का स्वभाव है, प्रकृतिक पदार्थों के सोने में जीव प्राकृतिक पदार्थों का प्रभाव और नृत्य से प्रभावित हो जाते हैं ना, किसी भी कोठी देखी मैल देखा वस्त्र देखे आभूषण देखे, जीव पर पड़े प्राकृतिक पदार्थों के प्रभाव नृत्य को हटाने के लिए भगवान ये रहस्य प्रकट करते हैं। भगवान क्या बता रहे हैं, जीव को उन पदार्थों में जो प्रभाव और नृत्य देखने में आता है वस्ता मूल में मेरा ही है उनका नहीं। सर्वोपरि प्रभावशाली तथा महत्वशाली मैं ही हूँ, मेरे ही प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं। श्लोक 13। रामाभिषेच भूतान धर्मे हमोजसा पुष्णानि चोष्णि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। मैं पृथ्वी पुरुष लोग अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को ध्यान करता हूँ। भगवान ने क्या कहा, पृथ्वी में कौन प्रदृष्ट होता है, मैं और जितने भी प्राणी है पृथ्वी को इनको मैं ही ध्यानता हूँ। मैं ही स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त ओषणियों को पुष्ट करता हूँ। चंद्रमा ओषणियों को पुष्ट करता है रात को से। पृथ्वी चंद्रमा जैसा भगवान के प्रति है, इसके उत्पादक भाग पालक संरक्षण प्रकाशकारी सब कुछ भगवान ही है। भगवान की शक्ति होने से प्रकृति भगवान से अभिन्न है। अपरा और परा दो बताई थी ना आपको शक्तियों भगवान की। अपरा तो ये कुदरत है, प्रकृति या हमारे सामने, परा जो वो इन आंखों से नहीं देखी जाती। तो ये दोनों शक्तियाँ भगवान से अभिन्न है, भगवान की है, भगवान से जुड़ी है। श्लोक 14। हम दैश्वर नरो भूतवा नाम देव आशिता प्राण पान समानता प्राणियों को शरीर में रहने वाले में प्राण अपान से युक्त रक्षाग्नि होकर चार प्रकार के अंगों को पचाता हूँ। ये जो हमारे ऑक्सीजन जाती है और प्राण जो है हमारे उससे क्या करता हूँ, मैं रक्षाग्नि बनता हूँ, अंदर जाकर और भोजन को पचाता हूँ। पृथ्वी में प्रविष्ट होकर संपूर्ण प्राणियों को ध्यान करना, चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों का पोषण करना, तीन को खाने वाले प्राणियों के भीतर जठराग्नि होकर खा हुए अन्न को पचाना आदि संपूर्ण कार्य भगवान की ही शक्ति से होते हैं। परंतु मूषण कार्यों को अपने द्वारा किए जाने वाला मानकर व्यस्त में ही हनुमान कर लेता है। जैसे बैलगाड़ी के नीचे छाया में चलने वाला कुत्ता समझता है कि बैलगाड़ी में ही चलाता हूँ। श्लोक 15। सर्वस्य च अहम् यदि समनुविष्टो मता समतिर्यान् पोहनम् च वेदे च सर्वेऽहमेव वेदो वेदान्त कृत वेद विदेव च अहम्। मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझसे समृति ज्ञान अपोहन होता है। मनुष्य आदि दोषों का नाश होता है, अपोहन का मतलब है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला ही मैं ही हूँ, सब कुछ भगवान ही। पिछले तीन श्लोकों में भगवान ने प्रभाव और क्रिया रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया। आप प्रस्तुत श्लोक में से अपना वर्णन करते हैं। तात्पर्य के श्लोकों से भगवान का वर्णन है। आदित्यगत, चंद्रगत, अग्निगत, दैश्वर नगागत भगवान का वर्णन नहीं। मूल में एक ही तत्व है, केवल वर्णन में भिन्नता है। मैंने एक किया सब कुछ। मैंने बांसो जीव लोके पदों से ये सिद्ध हुआ कि भगवान अपने हैं और यहाँ सर्वस्व हृदय समनिष्ठा पदों से ये सिद्ध होता है कि भगवान अपने में है। भगवान को अपना स्वीकार करने से उनमें स्वाभाविक प्रेम होगा और अपने में स्वीकार करने से उन्हें पाने के लिए दूसरी जगह जाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। सबके हृदय में रहने के कारण भगवान प्राणी मात्र को नित्य प्राप्त है। अतः किसी भी साधक को भगवान की प्राप्ति में निराश नहीं होना चाहिए कि उनको तो मिल जाएंगे, हमें नहीं मिलेंगे, हमारे पास ये भी है वो ही है। जब भगवान हमारे भीतर ही है तो हमें क्यों नहीं मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। अतः किसी भी साधक को भगवान की प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि वेद अनेक हैं, तो सब मैं जानने योग्य एक मैं ही हूँ और उन सबको जानने वाला भी मैं ही हूँ। तात्पर्य कि सब कुछ मैं ही हूँ। वासुदेव सर्वम, भगवान कहते हैं कि वेद में ही, वेदों में जो कुछ लिखा गया वो भी मैं ही। अतः भगवान बहुत बहुत से त्रस देते हैं, जोर देते हैं, अर्जुन के माध्यम से हमें समझाते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ। आप अपने से दूर मत समझो मुझे, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे भीतर रहकर सब काम भी करता हूँ, मेरी शक्ति सब कुछ रहती है। दुआ श्लोक 16। Dvarmo purusho loke shachakshara evacha shasarvani bhutani tasthakshara uchyate. Is sansar mein shar aur akshar ye do prakar ke purush hain. Shar hua nashvan, akshar hua dunash, jiska nash nahi hota, vinashi. Sampurna praniyon ka shir kshar hai aur jeevatma akshar hai. और भगवान को भी अक्षर का ओम अक्षर है. पहले छठे श्लोक में और फिर बाद में पंद्रहवें श्लोक तक भगवान ने अलौकिक तत्व का वर्णन किया कि स्वतंत्र सत्ता अलौकिक की ही है, लौकिक की नहीं. लौकिक की सत्ता अलौकिक से ही है, अलौकिक से ही लौकिक प्रकाशित होता है. लौकिक में जो प्रभाव देखने में आता है वह सब अलौकिक ही है. ये अब सोलहवें श्लोक में भगवान लोक पद लोक तत्व का वर्णन करते हैं. क्षय जगत है, अक्षर जीव है. समझने के प्रथम करना समझो कि जगत क्या है. अक्षर है, नाशवान है, और हम जीवात्मा जो है वो अक्षर है. और भगवान दोनों से विलक्षण अलौकिक है. भगवान अक्षर है, नक्ष जगत है. भगवान अपने को मैं विलक्षण हूँ, अलौकिक हूँ. कर्म योग ज्ञान योग ये दो मार्ग भी लौकिक है. कर्म योग और ज्ञान योग से भी योग को भी भगवान कहते हैं, ये भी लौकिक है. अलौकिक नहीं, लोके असीम विदा निष्ठा गीता तीन तीन. क्षण को लेकर कर्म योग, अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है. कर्म योग कहाँ चलता है? संसार में जो क्षर है और अक्षर जो है उसको लेकर क्या चलता है? ज्ञान योग. अक्षर भगवान को जानने के लिए हमें ज्ञान रास्ता पकड़ना पड़ता है. परंतु भक्ति योग अलौकिक है. समझो, समझने का प्रथम करो कि हमारा ये जो भक्ति योग है ये अलौकिक है, जो भगवान को लेकर चलता है. जब हम भक्ति करते हैं तो हम भगवान से जुड़ जाते हैं. अपने ध्यान में बने अपरा प्रकृति को क्षय कहा, या तो वो ही पड़ा, लेकिन क्षय नाशवान. और पड़ा क्या है? अक्षर है. श्लोक सारा उत्मा प्रशस्त वन्य परमात्मता यो लोग आविष्य भी भक्ति ईश्वर. उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है, जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है. उत्तम पुरुष कौन है? परमात्मा जो विलक्षण है, इसलिए उनको परमात्मा कहा. वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है. पुरुषोत्तम को अन्य कहने का तात्पर्य है कि क्षर और क्षर तो अलौकिक है, पर पुरुषोत्तम दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक है. परमात्मा विचार के विषय नहीं है, परंतु श्रद्धा और विश्वास का विषय है. परमात्मा के होने में भक्त संत महात्मा वेद शास्त्र से प्रमाण है. अन्य का स्पष्टीकरण भगवान ने अगले श्लोक में किया है. भगवान मात्र प्राणियों का पालन पोषण करते हैं. पालन पोषण करने में भगवान किसी के साथ कोई पक्षपात भी नहीं करते. वे भक्त अभक्त पापी पुण्यात्मा आस्तिक नास्तिक आदि सबको समान रूप से पालन पोषण करते हैं. देखने में भी आता है कि भगवान द्वारा रचित सृष्टि में सबको समान रूप से प्रकाश देता है. पृथ्वी सबको समान रूप से धारण करती है. वायु श्वास लेने के लिए सबको समान रूप से प्राप्त होती है. अन्न और जल सबको समान रूप से तृप्त करते हैं. जब भगवान के द्वारा रचित सृष्टि इतनी निष्पक्ष उदार है, तो फिर भगवान स्वयं कितने निष्पक्ष और उदार होंगे. बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है कि भगवान ने जो कुछ दिया वो सबको बराबर है. प्रयोग करना अपनी अपनी इच्छा है. आधुनिक वेदांतियों ने ईश्वर को कल्पित बताकर साधक जगत को बड़ी हानि की है. वो इस बात का भय है कि ईश्वर को मानने से अपने अद्वैत सिद्धांतों में कमी आ जाएगी. परंतु ईश्वर किसकी कल्पना है? इसका उत्तर उनके पास नहीं है. वास्तव में सत्ता एक ही अद्वैत है, पर अपने राग के कारण दूसरी सत्ता यह दिखती है. उस दूसरी सत्ता का तात्पर्य संसार से है, ईश्वर से नहीं. क्योंकि संसार पर है, ईश्वर स्वकीय है, अपना है. अपना लोग मिटाए बिना दूसरी सत्ता नहीं मिटेगी. अपना राग मिटाए बिना दूसरी सत्ता नहीं मिटेगी. राग तो अपना है, राग मतलब मोह. पर मान गए ईश्वर को कल्पित, अतः ईश्वर को कल्पित ना मानकर अपना राग मिटाना चाहिए. संसार से जो हम युक्त गए हैं, हमें मोह हो गया है, इसलिए हम भगवान को कल्पित करते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, संसार से जब हम अपना मोह मिटा लेंगे, याद हटा देंगे, तो निश्चय विषय में हमें पता चलेगा। ईश्वर कल्पित नहीं है, प्रकृत अलौकिक है, ये माया रूपी धनों का बछड़ा नहीं है, प्रकृत सांड है, कितने शिलो में भी आया है। माया तो प्रत्यंग विद्वान माई नाम तुम भीषण श्वेता उपनिषद ने क्या कहा कि माया को प्रत्येक को समझना चाहिए। माया क्या है, ये कुदरत है, और माया पति किसको समझना चाहिए, महेश्वर को, भगवान को। आज तक जिस ईश्वर के असंख्य भक्त हो चुके हैं, वैकल्पित कैसे हो सकता है, जो उन लोगों के लिए है जो कहते कहाँ तुम्हारा ईश्वर, तुमने तो कल्पना ही की। यह श्लोक 18, यस्मात् अक्षर मतितो हम अक्षरदपि चोत्तमा अकस्मिन् लोके वेदे च कथिता पुरुषोत्तमा। मैं अक्षय से अतीत हूँ और अक्षय से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोकों में वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भगवान स्वयं अर्जुन को अपनी व्याख्या करके बताते हैं कि मैं क्या हूँ। चलो, अक्षय की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, पर परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता है। चलो, अक्षय दोनों परमात्मा में ही रहते हैं, परंतु अक्षर जीव क्षय के साथ संबंध जोड़कर उसके अधीन हो जाता है। ये तो हमने बार बार पढ़ा, ये अक्षर कौन है और अक्षर कौन है। अक्षर ये स्वतंत्र सत्ता है, ये प्रकृति है, और अक्षर कौन है, हमारा जीव। लेकिन जब जुड़ जाते हैं जीव और हम इस कुदरत से जुड़ जाता है माया से, तो फिर उसको पता नहीं चलता भगवान का। परमात्मा अक्षर के अधीन नहीं होते, परंतु अक्षर से अतीत रहते हैं, इसलिए परमात्मा अक्षर जीव से भी उत्तम है। यदि जीव जगत के साथ संबंध न जोड़े, उसके स्वामी परमात्मा के साथ संबंध जोड़े, तो वह परमात्मा से अधीन हो जाएगा। मतलब परमात्मा के साथ हम एक हो जाएंगे, अगर हम कुदरत से नाता तोड़ के, माया से नाता तोड़ के भगवान से जुड़े। श्लोक 19, एक और बात है, मुक्ति में तो अक्षर स्वरूप में स्थिति होती है, पर भक्ति में अक्षर से भी उत्तम पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। मतलब भक्ति पे ज्यादा भगवान जोर देते हैं, बोलते हैं कि भक्ति करो। श्लोक 19, यो मामे वंशमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् सः सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भावते। श्री अर्जुन इस प्रकार, जो मोहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। व्याख्या किसी विशेष महत्वपूर्ण बात पर पूर्वक लगता है कि बुद्धि श्रद्धा पूर्वक जब मनुष्य भगवान को अक्षर से अतीत जान लेता है, तब उसका मन अक्षर से हटकर भगवान में लग जाता है। जब भगवान को अक्षर से उत्तम जान लेता है, तब उसकी बुद्धि भगवान में लग जाती है। पहले मन लगता है, फिर बुद्धि, फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति और क्रिया से भगवान का ही भजन होता है। कारण की उसकी दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरा कोई होता ही नहीं। गीता में सर्ववित शब्द केवल भक्त के लिए आया है। भक्त समग्र को अर्थात लौकिक और अलौकिक दोनों को जानता है, इसलिए वह सर्ववित है। कारण की लौकिक के अंतर्गत लौकिक नहीं आ सकता, पर अलौकिक के अंतर्गत लौकिक भी आ जाता है। निर्गुण तत्व अक्षर को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी सर्ववित नहीं होता, प्रकृत समग्र भगवान को जानने वाला भक्त सर्ववित होता है। श्लोक 20, इति गुह्यातम शास्त्रम इदमुक्तम ज्ञानगम एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अत्यंत गोपनीय शास्त्र में द्वारा कहा गया है। हे भरत वंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान ज्ञान ज्ञातव्य तथा कृत कृत्य हो जाता है। भगवान इस अध्याय में अपने आप को पुरुषोत्तम रूप से और अलौकिक समग्र रूप से प्रकट किया है, इसलिए इसे गुह्यतम शास्त्र कहा गया है। कि भगवान हमें बताया कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, पूर्व श्लोक में सर्व भाव से भगवान का भजन करने अर्थात आप व्यभिचारिणी भक्ति की बात विशेष रूप से आई है। भक्ति में मनुष्य प्राप्तव्य हो जाता है। इस श्लोक में ज्ञात ज्ञातक तथा कृत कृत्य होने की बात आई है। लौकिक क्षय और अक्षर को प्राप्त है। फिर से संगीत क्षय क्या है? ये कुदरतीय माया। और अक्षर क्या है? जीव हम। अतः अलौकिक क्या है? परमात्मा। इस श्लोक से ये भाव निकलता है कि भक्त को ज्ञान योग तथा कर्म योग दोनों का फल प्राप्त हो जाता है अर्थात वह ज्ञात ज्ञातव्य कृत्य भी हो जाता है। अगर भक्ति रहो तो ज्ञान योग कर्म योग तो आ ही जाता है। ओम तत्सवितुर्थे श्रीमद् भगवत गीता सूक्ष्मेषु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोध्याय संपूर्ण हो गया। कल में षोडशोध्याय का पारायण करूंगे। अभी हम श्री महाराज की छोटी सी सूर्य द्वारा लिखी पुस्तक का अध्ययन करते हैं। हमने पढ़ा था शंकराचार्य जी तक ऐसे सिद्ध लोग जो होते हैं जब उन्हें पता जो उन्होंने वचन दिया होता है उसे पूरा करने के लिए शंकराचार्य जी जो होते हैं इसे अल्लाह पूछते हैं। और हमारे स्वामी जी भी जैसे वो ही फिजिकल रूप बना करके स्थूल रूप में देखते हैं उल्लू में और माता जी को जो वचन दिया उसे पूरा करते हैं। अब हम शंकराचार्य जी के विषय में हमें काफी जाने फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं शंकराचार्य जी का। तो वो पहुंचे तो माँ ने क्या कहा? दी मदर सेड शंकर आई वाज ओनली वेटिंग फॉर यू नो बाई योर योगा पावर लेट मी रियलाइज द सेल्फ एंड ऑलमाइटी इन ऑल फॉर्म्स सो दैट आई विल लीव दिस वर्ल्ड परफेक्टली कंटेंटेड। अगर हम माने की शंकर तो आई लिया है जो तुमने बचन दिया था। ये कहानी इस प्रकार है, मैं इसको थोड़ा सा आपको सुनाती हूँ। यहाँ तो नहीं लिखी है लेकिन मुझे याद आ गई जब मैंने शंकराचार्य जी का जीवन पढ़ा था उनकी लाइफ पढ़ी थी तो उसमें ये एक प्रश्न करा था कि शंकर भगवान शिव के अवतार है और उनका जन्म केरल में गाँव में हुआ था। वो जब जन्म लिया था तो माँ पार्वती स्वयं उनको दूध पिलाने आया करती थी। घर में बहुत गरीबी थी। धीरे धीरे शंकर बड़े हुए घर में कोई नहीं था कि विधवा माँ थी और दूसरे लोग तो थे जो ताए चाचे बहुत थे। तो शंकर जब बड़े हुए तो शंकर को तो आत्म ज्ञान था। वो जानते थे मैं कौन हूँ क्यों आया हूँ तो मुझे क्या करना है। इसलिए वो चाहते थे मेरा संन्यास हो जाए तो अच्छा है। लेकिन माँ कहती थी बेटा मैं अकेली हूँ तो संन्यास ले लेगा तो मैं क्या करूँगी। रोती थी तो भगवान शंकर सोचते थे अब क्या करूँ कैसे करूँ। एक दिन उन्होंने ऐसी लीला की वो नदी में नहाने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पाँव पकड़ लिया तो लोग दौड़े दौड़े उनकी माँ के पास आए और कहा माता जी शंकर को एक मगरमच्छ ने उनकी लात को या पाँव को पकड़ लिया है। तो माँ रोती हुई नदी के किनारे पहुंची। उसने बहुत कहा बहुत प्रार्थना की कि मेरे बेटे को छोड़ दो। तब शंकर ने कहा माँ आप ऐसा कह दो कि मैं अपने बेटे को संन्यास लेने दूंगी और तब ये मुझे छोड़ देगा। तो माँ तो मजबूर थी उन्होंने कह दिया ये मगरमच्छ इसको छोड़ दो ये सन्यासी बन जाए लेकिन जिंदा रहना चाहिए। ये शब्द सुनते ही मगरमच्छ ने शंकर का पांव छोड़ दिया और शंकर घर आ गए। घर आकर के माँ तो इस बात को भूल गई थी पर शंकर नहीं भूले थे। उन्होंने माँ को कहा माँ अब मुझे जाने दो मुझे सन्यासी बनना है। माँ ने कहा नहीं देखो मैं अकेली हूँ दूसरे लोग जो हैं मेरे ताए चाचे वो तो मेरा साथ देते नहीं मैं क्या करूँगी अकेली। तो शंकर ने कहा कोई बात नहीं माँ भगवान आपके साथ है लेकिन माना माने तो शंकर ने कहा आपने क्या कहा था, आपकी वाणी झूठ हो जाएगी। आपने कहा था छोड़ दो तो मुझे मगरमच्छ ने छोड़ दिया था। अब आप अपनी वाणी को सच्चा बन करने के लिए मुझे संन्यास की आज्ञा दे दो। तो माँ को मजबूरी को आज्ञा देनी पड़ी थी। लेकिन माँ ने साथ जब 8 वर्ष के शंकर घर से जाने लगे तो माँ ने कहा बेटा जब मेरा अंतिम समय आएगा तो आप आओगे जरूर आना। तो शंकर ने माँ को वचन दिया, माँ मैं अवश्य पहुँचूंगा, मैं चाहे कहाँ भी हूँगा कैसी भी हालत में हूँ मैं पहुँच जाऊंगा। तो शंकर एक बहुत बड़े योगी थे, शंकराचार्य जी ज्ञानी थे और योगी भी बहुत बड़े थे। तो कहते हैं कि जब माँ का अंतिम समय आया तो शंकर की आयु का कोई उल्लेख तो आता नहीं है, लेकिन 32 साल की आयु में तो शंकर शिव चले गए थे और भी बहुत साधना सिद्ध हो चुके थे, गंगोत्री में थे। तो उनको ध्यान में आया कि उनकी माँ का अंतिम समय आ गया है और मैंने वचन दिया है मुझे वहाँ जाना है, इसलिए शंकर ने अपना फिजिकल बॉडी जो है वो सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित की और सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो अपने गांव पहुंचे, लेकिन वहाँ उन्होंने सूक्ष्म शरीर को फिर से फिजिकल में बदल दिया, स्थूल में बदल दिया। और फिर वो भीतर गए, माँ को प्रणाम किया और कहा माँ मैं शंकर हूँ मैं आ गया हूँ। तो माँ ने फिर तब कहा मैं तो तेरा इंतजार कर रही थी, अब आप आई गई हैं तो आप अपने योग शक्ति से मुझे भगवान के दर्शन करवा दो ताकि मैं संसार से खुशी खुशी विदा लूं। और देरी हुआ तो शंकराचार्य जी ने उनको भगवान के दर्शन करवाए और माँ ने शरीर छोड़ दिया था। आदि शंकराचार्य बाई हिज सुपर नेचुरल पावर्स मेड हिज मदर रियलाइज द आत्मा एंड द ऑलमाइटी इन एवरी एटम ऑफ द वर्ल्ड एंड शोड हर ऑल द इनकार्नेशंस ऑफ द गॉड। सब कुछ दिखाया कि भगवान अणु अणु में है तो, और ये भी बता दिया सारे भगवान के जितने अवतार हैं सारे अवतार नौ के नौ अवतार उनको दिखाए। She left the world completely satisfied in meditation of the Almighty. Traveling by astral body or sukshum chirara is not difficult for these yogis. ये जो योगी होते हैं बड़े सिद्ध योगी, इनके लिए astral body होती है सूक्ष्म, उसके साथ यात्रा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। Who can separate the astral body from the physical body? ये जो स्थूल शरीर है जिसको हम समझते हैं कि ये मैं हूँ, इससे वो अपने को अलग कर लेती हूँ, एस्ट्रल बॉडी में कर लेती हूँ। वो क्या होती है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। बाय द पावर ऑफ मेडिटेशन एंड द विल, अपनी इच्छा से, इच्छा शक्ति से और ध्यान से क्या करते हैं, स्थूल शरीर को अलग रहने देते हैं और सूक्ष्म को अलग कर लेते हैं। देयर हैव बीन मेनी सेंट्स इन इंडिया हू कुड डू इट। There may be some at present also, शायद अभी भी कुछ ऐसे योगी हैं। अच्छा, स्वामी योगानंदा in his book autobiography of a yogi has given a different experience. He went to Himalaya with his friend. When they reached in the interior and higher Himalayas, they noted a new route, fog and gold separated from each other. योगानंदी लिखते हैं कि हम हिमालय ऊंचाइयों में गए लेकिन बहुत से हम थे इकट्ठे पर अलग हो गए, वहाँ बड़ी धुंध पड़ी थी। ज्यादा देर ही हिमसेल्फ बैंक हो गए द नाइट बाजे वो टू फॉल एंड स्वामी योगानंदा वाज हिमसेल्फ ऑफ शेल्टर। रात आ गई, स्वामी योगानंद जी ने लिखा कि मैं लगा ढूंढने कोई मुझे शेल्टर मिल जाए। ये सारा लाइट ऑफ ए लैंप इन कॉटेज एट सम डिस्टेंस। उन्होंने एक कॉटेज देखी जिसमें उनको लाइट भी दिखाई दी। ही वेंट देयर एंड रिक्वेस्टेड फॉर शेल्टर एंड ओल्ड बाबा जी केम आउट हु सीम्ड टू बी मोर देन 100 years ओल्ड। He said to Yogananda that he could stay with him for the night. आप रह सकते हैं। Yogananda sat inside. When the night fall, रात हो गई, the old Baba asked Yogananda, "But who do you like and what will you take?" क्या खाना चाहते हैं? चलेंगे। Yogananda said to Babaji that since nothing good will be, we live here, yahan kya milega? Let us keep fast to that, brother. Baba asked Yogananda to close his eyes for a minute. ऐसा ही जैसा स्वामी जी ने किया था बानू वाले प्रेमसिंह जी के साथ, रात के समय क्या खाना चाहते हैं जो बताया वही खाना आ गया था, और यंग का कहा कि अपनी आंखें बंद करो एक मिनट के लिए, ई डिड सो एंड ही ओपन हिज आईज टू प्लेस ऑफ बेल कुकुल कुकुल विच ही रियलाइज्ड वर प्रेजेंट वहाँ। तो क्या था वहाँ पर, वो फूड आ गया था, भोजन एक प्लेट बाबा जी के लिए थी, एक उसके लिए, उनके लिए, योगानंद जी के लिए। They had some tasks and slept in the quarters for the night. आपको सो गए। In the morning when योगानंद woke up, बाबा जी asked him, "Where do you want to go? आप कहाँ जाना चाहते हैं? You want to meet your companions or want to go back to Haridwar?" दोनों योगानंद जी ने कहा। Yogananda said that it would be difficult to search my companion. Abhishe Malay ne kaha, apne doston ko dhoondunga. So I want to go back to Haridwar. Baba ji told him, close his eyes for 1 minute. And then Yogananda was asked to open his eyes. He was sitting at Haridwar. Har ki pauri in Haridwar. Dekho. Baba ji ne kya bola, aankhe band karo. Aur jab aankhe kholi, खुल बोले आंखें, तो देखा मैं तो हर की पौड़ी थी हूँ। He was astonished how the journey of 2-3 days was completed in 1 minute. Lot walking, it was a miracle. आगे देखिए, what happened actually? The Baba by the force of will power and imagination changed the body of Yogananda from physical body to astral body, from Panchabhuta Shriva to the Sukshma Shriva, and made it travel as light over the rays of the light and reappear at Harki Pori Haridwar. Again as physical body in Panchabhuta Shriva. समझ आ गई होगी आपको। वो योगी इतने महान योगी थे कि उन्होंने अपनी विल पावर से, अपने शक्ति से योगानंद के शरीर को भी स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर बना दिया, और सूक्ष्म शरीर बनाकर उन्हें एक मिनट में हरिद्वार पहुंचा दिया, और बाहर जाके फिर उनको फिजिकल बॉडी बना दी। यही चमत्कार है, सुपर नेचुरल पावर्स है, ये अलौकिक शक्तियाँ, बट दे आर द प्रोड्यूस बाई योगा मेडिटेशन। पर ये शक्तियाँ कैसी आती हैं? योग से आती हैं, ध्यान से आती हैं, समाधि से आती हैं, एंड विल पावर एज पतंजलि, जैसे पतंजलि ने लिखा है, इट एज इट एज साइन इन द योग शास्त्र, योग शास्त्र में लिखी गई है। हम कहते हैं दफा पतंजलि का, मैं कहती हूँ पतंजलि के योग सूत्र में 5 यम है, 5 नियम है। अगर कोई 5 यम और 5 नियम पतंजलि के साथ ले, सिद्ध कर ले, तो वो योगी बन सकता है। बहन स्वामी शंकराचार्य को नोट निंद शास्त्र था विद हिज वाइफ ऑफ मननन ईश्वर एवोट आश्रम। अब शंकराचार्य की कहानी फिर से रामलाल जी शुरू करते हैं, उनके विषय में बताते हैं कि शंकराचार्य ने अपने शरीर को कैसे बदला, राजा कैसे बना लिया था। बहन स्वामी शंकराचार्य को नोट बिंद शास्त्र था विद हिज वाइफ। जब शंकराचार्य जी मदन मिश्रा की पत्नी से अबाउट गृहस्थ आश्रम के बारे में पाया, तो इट इज सेड दैट ही फ्रांस माइग्रेटेड हिज सोल इन द बॉडी ऑफ ए राजा हु डाइड ऑन द सेम डे। जब शंकराचार्य जी एक स्त्री के साथ शास्त्रार्थ में नहीं जीते, तो उन्होंने क्या किया सोचा, मुझे तो पता नहीं गृहस्थ आश्रम क्या होता है, मैं कैसे इसके साथ बैंस कर सकता हूँ, तो मैं अपने शरीर को किसमें बदल दिया, राजा के शरीर में डाल दिया, और वो राजा उस दिन उसकी डेथ हुई थी। अच्छा, फिर कहता है इंटरेस्टेड हिज बॉडी टू अस, कहते अपने को तो निकाल दिया और अपना शरीर अपने शिष्यों को देकर कहा टू कीप इट सेफ एंड गार्डेड, इसको संभाल के रखना जब तक मैं वापस नहीं आता मेरे सोल्ड बॉडी। राजा बिकेम अलाइव आफ्टर सम टाइम ऑफ हिज डेथ, और वो राजा जो मर चुका था वो जिंदा हो गया। द पीपल थॉट दैट ही गॉट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। The Rani came you to say the Raja has become very religious and learned since he got a new religion. The morning Soto Rani Rani ne kaha Raja bada dharmik tha isliye usko phir se zindagi mil gayi. They never knew that it was the soul of Shankaracharya which was entered the body of Rajas. Dekho Shankaracharya ki जी की आत्मा राजा के मृतशरीर में चली गई। शंकराचार्य लर्न ऑल द सीक्रेट रूल्स रेगुलेशन ऑफ गृहस्थ आश्रम। राजा बन गए ना, कहीं आने से बात नहीं करते हैं तो उनको पता लग गया गृहस्थ आश्रम कैसे चलता है। एंड देन अगेन ट्रांसमाइग्रेटेड हिज सोल इनटू द प्रीवियस बॉडी। फिर क्या किया, अपने सोल को अपनी आत्मा को फिर उस शरीर में लाया जो कि उसने अपने शिष्यों के पास रखी थी। और शंकराचार्य जब आगे अपने शरीर में तो वो राजा मर गया। इस बार स्वर्ण कलेव चमत्कार है। ये शंकराचार्य पूरे ट्रेन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ संकल्प शक्ति। ये कहाँ से किया शंकराचार्य ने, उनकी संकल्प शक्ति ऐसी थी। हमारे संकल्प में बहुत पावर है, मनुष्य के संकल्प में फिर पावर भी हमारी बड़ी सकता हूँ और मेडिटेशन में बड़ी डीप कर सकते हैं और हम समाधि में भी जा सकते हैं, लेकिन हम विषय वासनाओं में फंस चुके हैं। वो मन इधर उधर भटका रहता है, इसलिए हम इन महान योगियों की नकल तो क्या की तुलना में नहीं ठहर सकते, इसलिए हम आम मनुष्यों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। बट वी कैन बी ए योगी आल्सो, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी योग ओनली। सिद्ध पुरुष कैन डू, ये कोई साधारण बात नहीं, सिद्ध पुरुष इसको करते हैं। ऑल द मिरेकल्स पावर्स और सुपर नेचुरल पावर कम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड मेडिटेशन। फिर से रामलाल जी स्पष्ट देते हैं, जितने भी अलौकिक शक्ति किसी मनुष्य के पास आती है वो केवल अपनी इच्छा शक्ति और ध्यान से आती है। बट वन मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ व्हाट इज अहंकारा मन बुद्धि एंड चित्ता। लेकिन उस मनुष्य को इन बातों का पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि अहंकार क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है। प्राण वायु क्या है, जीवात्मा क्या है, द एस्ट्रल बॉडी क्या है एंड द सूक्ष्म शरीर क्या है। द सेल्स हू कैन सेपरेट देयर एस्ट्रल बॉडी फ्रॉम देयर फिजिकल बॉडी एंड यूज द एस्ट्रल बॉडी जस्ट एज फिजिकल बॉडी एंटर इनटू द एम ऑफ सुपर नेचुरल पावर्स, वो ही संतय कर सकते हैं जो इनके पास इट इज अप टू देम दे यूज देम और नॉट। ये अपनी इच्छा क्षमताओं की वो इन पावरों को यूज हो या न करें, कहीं नहीं चाहते को हम भक्ति में मस्त है, हमने क्या करना किसी के यहाँ जा करके। बट जनरली दे डोंट यूज देम, वो ऐसा ही होता है कि महान संत अपनी इन शक्तियों को प्रयोग में नहीं लाते हैं। जहाँ बड़ी जरूरी बात होती है मेडिटेशन इज द सेंटर फॉर वर्क ऑफ ऑल दिस। ध्यान इन सब के लिए बड़ा आवश्यक है, खेल भी सकती है। सच ए प्रोफाउंड मेडिटेशन विच में एंटर इन टू समाधि कैन अचीव एनीथिंग। ऐसा ध्यान जो मनुष्य को समाधि में ले जाए इससे बहुत कुछ होता है, कैन अचीव कुछ। What is meditation and how to enter meditation, how to maintain it and lead up to samadhi, the study of Patanjali Yoga Shastra is recommended. Ramlal ji likhte hain, agar kisi ko aise meditation karni hai aur साथ ही इसको स्थायी बना के रखना है और समाधि में जाना है, तो हमें पतंजलि का योग शास्त्र शास्त्र जो है वो पढ़ना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ गीता माँ श्री रामलाल सूद जी ने यहाँ अपनी कथा को विराम दे दिया है और अब हमें इसको समझना है, इसको अपने जीवन में धारण करना है और स्वामी जी को सदैव अपने मन में रखकर उनका ध्यान करना है और उनके वचन में पर अपने जीवन को अर्पित करना है। इन्हीं शब्दों के साथ गीता माँ कल हम ये ट्रिब्यूट तो स्वामी जी है इसी बुक में लास्ट में उसे पढ़ेंगे। जय माता दी।